نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة القدر بہت ہی خوبصورت سورت ہے, نام بھی خوبصورت ہے اور پیغام بھی خوبصورت ہے. 97 نمبر کی سورت ہے. پہلی ہی آیت القدر وہاں سے ہے. مکی ہے کہ مدنی ہے, کچھ کہتے ہیں مکی ہے کچھ کہتے ہیں مدنی ہے, بہرحال انداز وہی ہے جو پچھلی سورتوں میں ہے. ہمیں اس میں دونوں اشارے ملتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور زیادہ سٹرونگ بات یہی ہے. اس پوری سورت کا تھیم قرآن کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو ترتیب میں یہ سورت علق کے بعد ہے, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ سورت علق میں پہلی وحی تھی کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا, اور اب یہاں تقدیروں کا ذکر ہے کہ انسانوں کی تقدیریں کیسے بنی, اسی سورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. پھر قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا, کس حالات میں ہوا, وہ اس سورت کا بنیادی تھیم ہے. اور اس سورت میں یعنی شب قدر کا ذکر ہے, انشاءاللہ جہاں آئے گی تو ہم وہاں اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد اس سورت میں جس چیز کا انسان کو یقین دلایا گیا وہ کیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حکم سے اس ایک رات میں عبادت کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری راتوں کی عبادت کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اس کی وسعت کا بھی ذکر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے یا شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, نازل ہوتے ہیں اس میں جبرائیل اور فرشتے, باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے. کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر, ہر بڑے کام کے لیے, ہر فیصلے کے لیے, یعنی ہر طرح کے کاموں کو انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں. کب تک رہتی ہے اس رات کی فضیلت؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. سورت قدر مختصر سی سورت ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ سورت کے شان نزول میں کچھ واقعات آتے ہیں جس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر چھوٹی ہونے کے باوجود مقام دیا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے مجاہد سے کہ رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال بیان کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مصروف رہا, کبھی ہتھیار نہیں اتارے. مسلمانوں کو یہ سوچ کر تعجب ہوا, کس بات پر؟ کہ اس کی اتنی لمبی عمر تھی تو اس نے اتنی نیکی کر لی, تو ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. اس پر سورت قدر نازل ہوئی جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر ہے. پہلے میں دیکھیے مجاہد ہے, پریکٹیکل نیکیاں کرنے والا, اور اس میں عابد کا ذکر ہے کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل جاتا تھا, دن بھر جہاد میں مشغول رہتا اور 1000 مہینے تک مسلسل اسی طرح گزار دیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت قدر نازل کر کے بتایا کہ آپ کی امت کی فضیلت یہ ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت ان کو اتنا زیادہ فائدہ دے گی. آپ دیکھیے کہ سورت میں جو بنیادی چیز ہے اتنا انزل نہ ہو, ہم نے نازل کیا اس کو, لفظ اتنا کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ اس پہ فتنہ اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ, پھر اللہ ایک سے زیادہ ہے, اسی لیے اتنا یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک, اتنا اضافت برائے تشریف, عزت کے لیے, جیسے دنیا میں بھی بڑے لوگوں اور بادشاہوں کو لوگ آپ کہہ کے پکارتے ہیں تم کی بجائے. और दूसरा इसका एक जवाब दिया गया कि जहाँ भी लफ्ज़ इन्ना आता है, जमा का सीगा आता है अल्लाह ताला के लिए, तो अल्लाह ताला की मुराद उससे क्या है कि अल्लाह ताला ने ये काम फरिश्तों के ज़रिए से किया, यानी किया अल्लाह ने, फरिश्तों को हुक्म दिया। फिर अनज़लहू, हमने इसको उतारा। अनज़ला युनज़िलु तंज़ील, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नज़ूल के दो दर्जे होते हैं, एक होता है नज़ला और एक होता है अनज़ला। फ़र्क क्या है? नज़ला होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना, तदरीज, तफ़ील बाब है। और अनज़ला का मानी क्या होता है? एक ही दम, टुपोर के मानों में। कुरान पाक में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अनज़ला, तो मुराद क्या है? अनज़ला, हमने इसको उतारा। कैसे उतारा? एक दम उतार दिया। जबकि कभी कभी हम कुरान में पढ़ते हैं नज़ला, तो उसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा उतारा। तो दोनों में तत्बीक या दोनों को जमा करें तो क्या समझ आता है? कुरान के नज़ूल के दो हिस्से हैं। नज़ूल अव्वल लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक हुआ था, वो एक दम हुआ था और उसके लिए लफ्ज़ अनज़लना आया। उसके बाद आसमान दुनिया से लेकर कल्बे मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थोड़ा थोड़ा करके 22 साल 6 महीने और कुछ दिन, जिसको हम 23 साल कह देते हैं, 23 साल में उतरा, जो कि हम पीछे पढ़ते आए, मक्की दौर, मदनी दौर, अगली पिछली सूरतें, तो वो तंजील थी। तो यहाँ जब हम अनज़ल ना हो का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है कि कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया में कब नासिल हुआ? फी लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्र में। तो क्या पता चला? कि पूरे का पूरा कुरान लैलतुल क़द्र में नासिल हो गया था वहाँ। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, इससे वही कुरान नाजिल होना मुराद है जो नबी सल्लम पे उतरा, तो फिर वो क्या कहते हैं कि कुरान का नजूल जो शुरू हुआ था वो उस रात को लैलतुल क़द्र थी। समझ आ रहे? यानी रमज़ान में नाजिल हुआ। इसमें बहुत सारी रिवायतें हैं, बाद में बता भी दूंगी, लेकिन कोई इतना अहम नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? जैसे हम कहते हैं तुम्हें उसकी क्या कदर, वो कितनी बड़ी बात है। लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फ़ शहर, ये तो हज़ार रातों से बेहतर है। तो आइए ज़रा लफ्ज़ लैलतुल क़द्र पे बात करते हैं। लफ्ज़ क़द्र क्या है? हमारे यहाँ इसका मानी क्या होता है? अजमत और शर्फ। ठीक है, तो पहला मतलब इस रात को लैलतुल क़द्र कहने का क्या है कि ये रात अजमत और शर्फ वाली है। यानी लैलतुल क़द्र इसको इस वजह से कहा गया कि जिस आदमी की इससे पहले अपनी बेअमली के सबब कोई कदर व मंजिलत ना थी, इस रात में तौबा इस्तिग़फ़ार और इबादत के जरिए वो साहिब कदर बन गया। बात वाज़े? यानी पहला मानी क्या है? कदर, इज्जत और शर्फ का। कदर का दूसरा माना होता है तकदीर, हुक्म। तो फिर लैलतुल क़द्र इसको क्यों कहते हैं? कि इस रात अल्लाह ताला तमाम मखलूकात का अगले साल का फैसला करता है। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना शबे बिरात का लफ्ज़ जो है, ये पूरे साल के फैसले होते हैं और पत्ते लगते हैं और पत्ते झड़ते हैं। वैसे तो हमने सूरह दुखान की इब्तदाई आयतों में बात की थी, तो यहाँ नोट कर लीजिए। मिन कुल्ली अम्र, हर काम के लिए तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह, फरिश्ते उतरते हैं। तो इस साल अल्लाह ताला जो हमारे फैसले हैं वो फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, जो आने वाले साल में होने होंगे। तो इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है कि इसमें तदबीर और कामों का करना, मुकर्रर करना, प्लानिंग, सब कुछ। और इसमें इंसान की उम्र, मौत, रिस्क, बारिश वगैरह सब कुछ फरिश्तों को लिखाई जाती है। हत्ता कि इस साल आप हज करेंगे कि नहीं, वो भी लिखवा दिया जाता है। और इस साल कोई नहीं किया आपके नसीब में है, कोई कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। और मलाइका से बाज़ लोगों ने मुराद लिया कि इसराफील भी हैं इसके अंदर, मीकाइल भी हैं और इज़राइल भी हैं और जिब्राइल भी हैं। फिर इसके बाद एक तीसरा मानी बहुत ही खूबसूरत है लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र करने का। लफ्ज़ क़द्र का मानी होता है तंगी। पीछे आप पढ़ चुके हैं सूरत अल्लाक में आया था वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़हु, जिसका रिस्क तंग। कुदिर, क़द्र, तकदीर। फिर पीछे आपने हक महर के मामले में भी पढ़ा था कि जो तंगी वाला है वो कम दे दे, जो कुछ वसत वाला ज़्यादा दे। तो लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है कि इस रात इतने फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। और ये फरिश्तों का नज़ूल जो है हमें सही रिवायात से मिलता है कि कितने फरिश्ते उतरते हैं, उस वक़्त क्या करते हैं, ये होती कब है। तो इसके बारे में सही बुखारी में हज़रत आयशा की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शबे कदर को रमज़ान की आखिरी अशरे में तलाश करो। सही मुस्लिम में आता है कि शबे कदर को रमज़ान के अशरे की आखिरी ताक रातों में तलब करो। तो क्या पता चला? किसी में हिम्मत और तौफीक है तो आखिरी 10 रातें इस नियत से इबादत कर ले कि शायद कोई रात हो। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 रातें मुसलसल इबादत करें तो फिर आप उसमें कम से कम 7 रातों के अंदर इबादत कर लीजिए। फिर एक और सवाल होता है कि क्या ये रात है, क्या एक ही दफ़ा होती है या बदलती रहती है। देखिए, ये उन राजों में से है कि जिसको अल्लाह ने ना तो पूरा खोला है और ना पूरा छुपाया है। इशारे दे दिए गए कि ये रात बदलती रहती है। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम अपने हुजरे से बाहर आए तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो देखा इतने में दो लोगों का झगड़ा हो गया। आप जब उस झगड़े का तस्फिया करने लगे, मामला रफा दफा हुआ, तो आपने फरमाया मैं लोगों को लैलतुल कदर के बारे में बताने आया था, लेकिन तुम्हारे झगड़े में वो बात मेरे जहन से महव कर दी गई। तो इससे पता चलता है कि उम्मत के झगड़े लड़ाइयाँ जो होती हैं वो उम्मत की खैर को हटा देती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक रात की इबादत को अगर आप जमा करें तो 1000 रात के बराबर है, तो अगर 1000 रातों को जमा करके देखें 83 साल, यानी अगर आप एक रात इबादत करते हैं तो 83 साल इबादत करने के बराबर बन जाती है, और अल्लाह ताला चाहे तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा से रिवायत है कि जो शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हुआ इसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। शर्त एक है, अल्लाह से अजर लेते हुए और आजजी के साथ। फिर इब्ने अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब कदर में वो तमाम फरिश्ते जिनका मुकाम सिदरतुल मुंतहा पर है, जिब्राइल अमीन के साथ दुनिया में उतरते हैं, और कोई मर्द औरत ऐसी नहीं जिसको वो सलाम ना करते हों सिवाय उस शख्स के, नंबर एक, जो शराब पीता हो या खिंजीर का गोश्त खाता हो। एक रिवायत में आपने फरमाया जो शख्स शब कदर की खैर बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। इसी तरह अल्लाह ताला चाहे तो किसी को इस रात किसी चीज़ का मुशाहिदा भी करा सकता है, लेकिन लाजिम नहीं कि कराए। ना हो तो आप कहें कि हमारी इबादत कबूल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसका ताल्लुक ऐसी है जैसे ख्वाब से, कभी अल्लाह आपको कोई ख्वाब दिखा देता है किसी मामले में, कभी नहीं दिखाता। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा अगर मैं शबे कदर को पालूँ तो क्या दुआ करूँ, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तू मुझे भी माफ़ कर। क्या पता चला कि सबसे बड़ी दौलत माफ़ी है। ये भी तो कह सकते थे आयशा औलाद मांग ले, बेटा ही मांग ले, अभी तेरी उम्र ही क्या है, कोई तेरा बुढ़ापे का सहारा होगा, चल कुछ घर मांग ले, कोई खाना मांग ले। तो इससे पता चलता है कि बड़े लोगों के गम भी बड़े होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो अल्लाह सुबहान तआला ने बात की है फरिश्तों के उतरने की, तो फरिश्ते उतर के करते क्या हैं। हज़रत अनस से रिवायत है कि जब शबे कदर होती है तो जिब्राइल अमीन फरिश्तों की बड़ी जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, और जितने बंदे अल्लाह के यानी औरतें और मर्द नमाज या जिक्र में मशगूल हों तो सब के लिए रहमत की दुआ करते हैं, यानी फरिश्ते दुआएं करते हैं। और फिर ये जो लफ्ज़ है मिन कुल्ली अम्र में, तो मिन बमानी बा है, यानी जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं यख्फ़ज़ूनहू मिन अम्रिल्लाही, कि अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करते हैं। तो आप देखिए फरिश्ते वैसे तो सारे साल हमारी प्लानिंग्स और कोशिशों में रहते हैं, लेकिन ये एक ख़ास मौका होता है, जैसे आप कह लें एक एनुअल मीटिंग है या एक टास्क मैनेजमेंट है कि किसने कब क्या काम करना है। अब ये जो लफ्ज़ है हत्ता मतला फजर, तो उस फजर के तुलू होने तक ये वक्त है, जी बिल्कुल यही है। अब सवाल पैदा होता है कि एक इंसान सारी रात जागे, तो ऐसा नहीं है। नबी सल्लम के अमल से पता चलता है कि आप कभी भी पूरी रात नहीं जागे। आसान तरीका क्या है कि रात को ईशा की नमाज वक्त पे जमात के साथ पढ़ें, थोड़ा बहुत अगर आप तरावियों में 2-4 पढ़ लें, उसके बाद थोड़ा सा वक्त सो जाएं, और उसके बाद फिर रात को दोबारा उठें, फिर बाकी जो नफिल हैं 2 तरावी या 4 रह गई जितनी भी, उसमें जितना कुरान पढ़ सके पढ़ें। दुआ पढ़नी हो तो अल्लाह मन्ना काफूफ़ुन तो हिब्बुल अफ़्वा पढ़ें, कुरान पढ़ना हो अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज में पढ़ लें, अदरवाइज अलग से कुरान भी पढ़ सकते हैं। ये इबादत है, और इंशाल्लाह जब रमज़ान आएगा तो इस पे आपको अलग से भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, लेकिन याद रखिए कि इस रात की इबादत बहुत बड़ी है। एक सवाल किसी ने पूछा किसी से कि भाई ये बताइए कि एक हदीस है कि जिसने ईशा की नमाज रात को जमात से पढ़ी फिर फजर भी जमात से पढ़ी तो उसको तो पूरी रात की इबादत का सवाब है, तो अगर कोई इस रात में भी ऐसा करे तो देखिए अल्लाह अजर देने से कासिर नहीं है, लेकिन मन जद्दा वजदा जो जितनी कोशिश करेगा उसको उतना ही अजर मिलेगा। अब हम अपने आप से सवाल करते हैं क्या सिर्फ शबे कदर का इंतज़ार करें, लैलतुल कदर का इंतज़ार करें, जब आएगी तो काम करेंगे, फिर ही सब कुछ करना है, तो उस रात वही ये काम कर सकता है जिसको आम दिनों में आदत होगी। किसी ने किसी से पूछा कि भाई लैलतुल कदर कौन सी रात होती है, कहने लगे हर वो रात जिसकी तुम कदर कर लो वो लैलतुल कदर है। हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है, आप लैलतुल कदर के इंतजार में अपनी नेकियां डिले नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में वो रात आएगी भी कि नहीं आएगी। इसी तरह इसकी कुछ निशानियां बताई गई, कुत्ते नहीं भौंकते, रात ठंडी होती है, अगले दिन जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी में चमक नहीं होती, क्योंकि फरिश्ते होते हैं अभी दुनिया में, उनकी वजह से ज़मीन और आसमान के बीच में एक किस्म का गुबार होता है, और इस तरह उनके जाने में यानी जो वक्त लग रहा होता है उसकी वजह से ये निशानियाँ ठंडी होती है, सुकून वाली होती है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमें इस वक्त सिर्फ अपने अमल पर गौर करना है कि क्या वाकई हम अपनी ज़िंदगी में कितनी रातों को पा चुके, हमने उन रातों की कदर की। आप देखिए कि कुरान पढ़ने और उसको जज्ब करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात का वक्त होता है। कुरान पढ़ने वाले को अपनी रातों को रोशन करना है। मैं अपने लिए और आपके लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारी रातों को कुरान के नूर से जगा दे। किसी भी तरीके से आप उस वक्त कुरान के साथ अपना ताल्लुक रखें, तर्जुमा याद करें, असाइनमेंट कर रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर अच्छी तरह से आप कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो उसका तो एक अपना ही हुसन है, और इंशाल्लाह उससे आपको खुद भी फ़र्क पता चलेगा। फिर ये जो बात है कि मिन कुल्ली अमरिन, तो यही बात सूरह दुखान की इब्तदाई आयतों में भी पड़ी थी, आयत नंबर 5 में, फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात हर मामले का हकीमाना फैसला किया जाता है। और किसी को नहीं पता कि हमारे लिए पिछले साल की लैलतुल कदर में क्या फैसला किया गया था। अभी दिन तो है ना, महीने से भी ज्यादा है रमजान में, तो क्या पता है कि हम अगले साल की लैलतुल कदर से पहले ही पूरे हो जाएं। ये सोच रखें कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फिर एक सवाल है कि 27वीं है कि 29वीं है। देखिए रिवायात दोनों तरह की मिलती हैं। अबू दाऊद की रिवायत में है कि लैलतुल कदर 27वीं होती है या 29वीं होती है। मुस्नद अहमद में आता है कि वह रमजान की बिल्कुल आखिरी रात है, यानी 29वीं इशारा मिलता है। इसी तरह कुछ और हदीसों से 21वीं और 23वीं भी रात है। तो बस जब अल्लाह के नबी ने कह दिया कि इसको आखिरी रातों में ढूंढो तो वह आखिरी होंगी, क्या करें, सारी रातें जागे? कोशिश तो यही करें, कम अज कम वो नहीं हो रहा कुछ कम कर दें, और कुछ नहीं तो कोई एक तो कर लें, यानी ये तो फिर आपकी अपनी कोशिश है ना। तो अल्लाह के नबी तो इतकाफ करते थे और आप तो पूरे 10 दिन में लेते थे। फिर एक और चीज नोट कीजिएगा, जो इतकाफ किया जाता है ना उसका मकसद भी लैलतुल कदर को पाना होता है, इसलिए इतकाफ करने वाले 10 रातें जागेंगे, यानी उनको रातों में जाकर इबादत करके कोशिश करनी होती है कि हम इस रात की जो खूबी है उससे फ़ायदा ले सकें, और इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी कोशिश को ज़ाया भी नहीं करेगा। लैलतुल कदर हो ना हो, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि अगर वो नहीं है तो तुम्हारी अजर जो है वो ज़ाया कर दिए गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा दिल इबादत में लगा दें, और इबादत कब होती है, जब इंसान दिन के वक्त मुतमईन तरीके से, मसरूर तरीके से अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहता है। तिलावत सुनते हैं, और इंशाल्लाह इसी के साथ साथ हम फिर अगली सूरत के लिए भी अपने जहन को तैयार करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत सूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि अब वो सूरतें आ गई हैं कि जिसके बीच में बोलने को भी दिल नहीं करता, बिल्कुल एक चेन है जो पिरोई हुई है, और अल्लाह ताला ने उसमें अहकामात को बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ पेश किए। हम तिलावत सुनते हैं सूरह कदर की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر।
कोई सवाल तो नहीं आपके जहन में उभरा इसके बारे में? जी आप सिस्टर।
लैलतुल कदर के बारे में ये भी पता करना, जो शब की जो लैलतुल कदर होती है उसमें भी लोग इबादत करते हैं, जागते हैं और दिन को रोजा रखते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है?
जी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से ऐसा करते हैं, वरना ये जो लैलतुल कदर की रात है, देखिए ना यहाँ तो साथ ही आ गया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इन्ना अनज़लना हु फी लैलतुल कदर, तो इससे मुराद 15 शाबान है, तो आप कुरान से ही दलील दीजिए कि ये रात नहीं है, तो उसकी दलील शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, ठीक है। तो वो रात जो उसके बारे में कुछ ज़ईफ़ रिवायतों की बुनियाद पे लोग इस तरह सोचते हैं, हालांकि वो रात आम रातों की तरह आप उसमें भी जागें, आप उसमें भी रोज़ा रख सकते हैं अगले दिन, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि आज के रोज़े का आम दिनों के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.